اللہ الرحمن الرحیم. لیونگ ود ویژن سیشن نمبر 6. آج آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ نیٹ ورکنگ ہے. جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جب ایک ویژن آپ کے پاس آ جاتی ہے اور آپ ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں تو آپ اس میں سے پھر ایک مشن بناتے ہیں, جیسے ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. اور اس پروجیکٹ کی سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی ڈیڈ لائن ہو. اگر آپ کے پاس ڈیڈ لائن نہیں ہوگی, اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ پروجیکٹ یا یہ مشن میں نے کتنے عرصے میں پورا کرنا ہے, تو پھر آپ کی ویژن جو ہے وہ صرف ایک خواب رہ جاتی ہے. وہ صرف ایک, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں, خواہش ناتمام, تو وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے. اور اس کو ایسی چیز بننے سے بچانا بہت ضروری ہے, کیونکہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ناتمام ویژنز ہوتی ہیں اور جو انسان کے اندر کی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے کچھ کرے, اگر وہ ان سے جھجک جائے یا وہ ان سے ڈر کے پیچھے ہٹ جائے تو اس کی پرسنالٹی میں ایک فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے, ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, جو اس کو ایک افیکٹو زندگی گزارنے کے قابل نہیں چھوڑتی. تو ایک دفعہ جب آپ نے ویژن بنا لی ہے اور اس میں سے مشن سٹیٹمنٹ بھی نکال لی ہے اور اپنے آپ کو آپ نے ایک ہوم ورک دیا ہے جو آپ نے خاص تاریخ تک مکمل کرنا ہے, تو پھر آپ کے پاس آؤٹ کم انڈیکیٹرز ہونے چاہیے. یہ بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ آؤٹ کم انڈیکیٹرز آپ کیسے بناتے ہیں, یا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ان کو کہا جاتا ہے مینجمنٹ کی زبان میں, کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اپنا یہ جو میرا مشن تھا وہ میں اچیو کر چکی ہوں یا میں اپنا ٹارگٹ پورا کر چکی ہوں. تو وہ چیز بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی, اور میں نے آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا تھا کہ جیسے میں آج اگر ایک ارادہ کروں تو 6 مہینے کے بعد میں پھر کیسے اپنے ارادے کی کامیابی کو اور اپنے ایکشنز کی کامیابی کو کیسے جج کروں گی اور کیسے گیج کروں گی. اچھا جی, آج کا جو ٹاپک ہے, جب ایک دفعہ آپ اپنی مشن سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں اور اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز یا آؤٹ کم انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بھی آپ ڈیٹرمن کر لیتے ہیں, تو پھر اگلی نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ. یعنی کہ ویژن اچیو کرنا, یعنی آپ کی اپنی کوئی ویژن اگر ہے, اور یقیناً ہوگی, جو آپ اسی لیے میری بات سن رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ویژن ہے یا آپ کی آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں زندگی میں اور آپ ایک بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو وہ اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپوزیشن اوور کم کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلی جو اس کی مخالفت ہوتی ہے وہ تو آپ کا اپنا دل اور دماغ خود کرتا ہے, کیونکہ انسان بائی نیچر بہت زیادہ پیرانوئڈ واقع ہوا ہے. اس کا دل یا اس کا دماغ اس کو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے, ایسا کرنا بہت مشکل ہے, اور جب تم نے پہلے کوشش کی تھی تب بھی تم فیل ہو گئے تھے, اور اب تو بہت مشکل ہے کہ تم دوبارہ سے ویسی انرجی بلڈ اپ کر سکو, اب تو تمہاری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے, یا اب تو اتنے لوگوں کی مخالفت ہے تو یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. تو انسان کے اندر سے ایک ریزسٹنس اٹھتی ہے جو اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. اس کے بعد اندر کی بات تو چلیں آپ اس کو اوور کم کر لیں گے, اس کے بعد ارد گرد کے جو لوگ ہیں یا آپ کے جو حالات ہیں, بڑا فیکٹر جو ہے وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے. اس روٹین میں سے نکلنا اتنا مشکل ہوتا ہے, آپ ایک روٹین میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ صبح اٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے, نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ گئے اور آپ نے بچوں کا ناشتہ بنایا یا اپنے لیے ناشتہ بنایا اور سب کے لنچز بنائے, اپنا بیڈ ٹھیک کیا اور اپنی گھر والی نوکرانی کو کوئی ہدایات دیں, یا خود اب جو کچھ کرنے کے کام تھے آپ نے جلدی جلدی وہ سمیٹے اور آپ نے بچوں کو سکول بھیجا, یا آپ خود سکول چلی گئیں, یا آپ اپنی جاب پہ چلی گئیں, یا آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیں بھیج رہی ہیں, یا آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہیں, اس کے بعد آپ گھر کے اندر اور کوئی کام نمٹا رہی ہیں, یا اپنی ورک پلیس پہ آپ چلی گئی ہیں, تو اس کو انگلش میں رٹ کہتے ہیں. یعنی کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک چکر میں پھنس جاتا ہے اور وہ اس میں سے نہیں نکل پاتا. اس کو لگتا ہے جیسے اس کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ سارے کے سارے کمیٹڈ ہیں اور اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, اور وہ کسی بھی بامقصد پرسوٹ جو ہے وہ اپنے اس ٹائم میں نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ آپ اپنے روٹین میں سے نکل کے کوئی کام کرنے کا سوچیں. तीसरी बड़ी रेजिस्टेंस आपको एक्चुअली लोगों की तरफ से आती है, जो हर कोई यानी वो हमारे हमदर्द हैं और वो हमारे खैरख्वाह हैं, और सारे हमारे हमदर्द और खैरख्वाह जो हैं वो हमें ये कहते हैं कि तुम तो ऑलरेडी इतनी बिजी हो, तुम तो इतनी कमिटेड हो, उफ़ल्ला अब ये नया क्या मुसीबत तुमने अपने सिर पे ले ली है, और अब क्या तुमने ये अपना काम जो है वो इतना बढ़ा लिया, अब तो तुम बहुत थक जाओगी, कहीं तुम्हारी हेल्थ ना ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ें अपने अंदर से उठने वाली रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद अपनी रूटीन में से निकल कर एक नया काम करने की जो का जो प्रोग्राम है और उसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम करना और अपनी रूटीन को एक्चुअली ऐसे एडजस्ट करना कि आप उसमें अपनी विजन के लिए काम कर सकें, और फिर फाइनली अपने बड़े प्यारे खैरख्वाहों की बातें ओवरकम करना जो आपको यही कहते हैं कि क्या मुसीबत तुमने अपने सर पे ले ली है और एक तो तुम्हें पता नहीं क्या तकलीफ़ है। तो ये सब चीज़ें, ये तो यानी अभी आपने अपना काम नहीं शुरू किया होता और ये सब चीज़ें आपके सामने आती हैं। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है नेटवर्किंग। जैसे ये कॉन्सेप्ट है, इसको प्लाटूनिंग कहते हैं। अगर आपने कभी समंदर में मछलियां जब आप देखें ना, जब वो माइग्रेट कर रही होती हैं, तो आप देखें वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में माइग्रेट करती हैं, एक अकेली मछली कहीं नहीं जा रही होती, बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो एक बड़े सारे ग्रुप में इकट्ठी कहीं जा रही होती हैं, जैसे पानी में उन्होंने एक टनल सा बनाया हुआ होता है और वो उसमें जा रही होती हैं। या आप परिंदों को अगर माइग्रेट करते हुए देखें तो आप देखें बड़े बड़े झुंड होते हैं ना परिंदों के, सारे इकट्ठे उड़ते हैं। कबूतर देखें और ये चिड़ियाँ देखें, अबाबीलें देखें, जो भी आप ये परिंदे माइग्रेट करते हुए जब आपको नज़र आते हैं, जब उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस पे फ्लाइंग करनी होती है या जब उन्होंने समंदर में एक लॉन्ग डिस्टेंस तय करना होता है, तो वो झुंड की सूरत में ये काम करते हैं, एक साथ चलते हैं। तो इस मैकेनिज्म को और इस यानी कि नेचर के इस एलिमेंट को लोगों ने जब स्टडी किया तो उन्हें ये पता चला कि मछलियाँ जो हैं उन्हें पानी की रेजिस्टेंस ओवरकम करनी होती है, क्योंकि वो वेव के ख़िलाफ़ स्विमिंग कर रही होती हैं जब वो माइग्रेट करती हैं। तो पानी के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एक मछली जो है अगर वो चल रही होगी अकेली, तो उसको अपना एनर्जी का मे बी 50-60% हिस्सा जो है वो पानी की मुखालिफ लहर जो है उसको ओवरकम करने में लग जाएगा। लेकिन जब जैसे 85 और सैकड़ों मछलियां इकट्ठी जा रही होती हैं, तो जो पानी की रेजिस्टेंस पहले वो 50% एनर्जी से ओवरकम कर रही थी, अब वो उसको 10% एनर्जी से ओवरकम कर सकती हैं। वो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसके खिलाफ जाने वाला मास जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह परिंदे जब माइग्रेट करते हैं तो उनके सामने हवा की रेजिस्टेंस होती है, उन्होंने हवा की रेजिस्टेंस को ओवरकम करना होता है, तो वो सारे जब इकट्ठे उड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी सारी बॉडी बन जाती है और वो हवा की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और परिंदे की जो एनर्जी है वो फिर कम खर्च होती है उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। ये तो अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह मतलब। लेकिन इंटेलिजेंट लोगों ने जब ये चीज़ ऑब्ज़र्व की तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा एक ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है। तो अब अगर आप देखें, जैसे साइकिल की रेस अगर आप देखें, टूर डी फ्रांस बहुत बड़ा एक साइकिल की रेस होती है, तो उसमें अगर आप देखें तो वो साइकिल वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कंपीट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं या मुश्किल जगहों पे वो चला रहे होते हैं अपनी साइकिलें, तो वो झुंड की सूरत में चलाते हैं। बहुत सारे साइकिलिस्ट जो हैं वो आगे पीछे जो हैं एक लाइन में जा रहे होते हैं, और वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो उसी फॉर्मेशन में चलते रहते हैं जिसमें हवा की रेजिस्टेंस जो है उनके अगेंस्ट कम होती है और उनकी एनर्जी कम खर्च होती है। तो ये मैंने आपको इसलिए मिसाल दी, खूबसूरत कुदरत की मिसाल है ये, कि अल्लाह ताला ने ऐसा डिज़ाइन बनाया है रेजिस्टेंस को ओवरकम करना कि प्लाटूनिंग या झुंड बनाना और एक ग्रुप बना के रेजिस्टेंस को ओवरकम करना जो है वो बहुत आसान है और उसमें बहुत कम एनर्जी खर्च होती है और इंसान की एनर्जी बच जाती है बाद में काम करने के लिए। अगर एक बंदे की सारी एनर्जी लोगों की मुखालफत या अपने रूटीन को तोड़ने में ही लग जाए, तो उसके बाद जो है चूंकि उसने अपनी विजन अचीव करनी है, अभी तो असली काम शुरू ही नहीं हुआ है, तो उसकी एनर्जी तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए प्लाटूनिंग जो है या नेटवर्किंग जो है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अचीविंग योर विजन। अब हम नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एक अकेली विज़न किसी ने बनाई, उसने ये सोचा, कोई भी अच्छी सी विज़न उसने बनाई, उसने कहा कि मैं गरीब औरतों के लिए कोई काम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि गरीब औरतें जो हैं वो इतनी गरीब ना रहें जितनी वो मुझे नज़र आती हैं, ये घरों में काम करने वाली औरतें जो हैं ये इतनी गरीब ना रहें, ठीक है जी। अब ये उसने विज़न सोची अपने जहन में, उसने फिर अपनी विज़न में से एक मिशन स्टेटमेंट बनाई, और ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ जो हमारे साउथ एशिया के किसी मुल्क में ये वाकया, मतलब इस तरह का एक वाकया मुझे पता चला है। तो वो खातून जिन्होंने ये सोचा था, वो एक बिल्डिंग में रहती थी, बड़ी सारी बिल्डिंग थी, उसमें बहुत से अच्छे अमीर लोग रहते थे, उसके अपार्टमेंट्स जो थे वो खासे महंगे थे, तो वो उस बिल्डिंग में रहती थी और उनके घर जो मेड काम करती थी उसने उनको कोई ऐसी बातें बताई, दुख भरी अपनी कोई कहानी सुनाई, कि इन खातून के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि इनके लिए तो कुछ करना चाहिए, इन मेड्स के लिए तो कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इन्होंने अपने लिए मिशंस बनाए, इन्होंने ये सोचा कि अब मेरे इस अब बिल्डिंग में जो हैं कम से कम 35 या 40 मेड्स हैं, लोगों के घरों में नौकरानियाँ हैं जिनके लिए मैंने कोई काम करना है, तो इनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसके लिए फिर उन्होंने छोटे छोटे मिशन्स बनाए जिसमें उन्होंने वो हर एक घर में गई और उन्होंने हर घर में अपनी बात की, लोगों को बताया। अब कुछ लोगों ने उनका साथ दिया और कुछ ने ना दिया, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस बात का ये, क्योंकि वो खातून बहुत काफ़ी बड़ी उम्र की थी, शायद वो अपने बेटे के साथ रह रही हों, क्योंकि वो जॉब नहीं करती थी, वो वहाँ रहती थी उस बिल्डिंग में। उन्होंने जाके लोगों को ये कहा कि देखो तुम इतनी इतनी तनख्वाह जब अपनी मेड को देते हो ना, तो ये पता नहीं उसका क्या रोज़ाना क्या ख़रीदती है और क्या खाती है, तुम इसको महीने में एक विटामिन की गोलियों की बोतल देनी शुरू कर दो, क्योंकि इन बेचारियों की सेहत बहुत ख़राब होती है और ये बहुत अनीमिक होती हैं। अब उन्होंने अपने मिशन में ये किया होगा कि मैंने इन लोगों की न्यूट्रिशन अच्छी करनी है, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो ओवरऑल मेड्स की हालत बेहतर करने का कहा था। तो उन्होंने ये कहा कि तुम इसे अपनी तनख्वाह, जब तुम तनख्वाह देती हो तो उसी तनख्वाह में से इसको विटामिन की एक बोतल ख़रीद दिया करो। अब कुछ घरों ने उनकी बात मानी, मेरे ख्याल में 13 या 14 घर थे जिन्होंने उनकी बात मानी, और बाकी घरों ने ये कहा कि ये हमारा काम नहीं है और ये मेड खुद ही जाके अपने लिए ख़रीद ले विटामिन, क्या पता हम इसे विटामिन दें इसे कोई रिएक्शन हो जाए और फिर ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, या ये हमें ये कहे कि नहीं मैं इतने विटामिन नहीं अफोर्ड कर सकती और आप मुझे ये ना दें, आप मुझे इसके पैसे ही दे दें। यानी वो लोग जो थे उन्होंने वो अपनी रेजिस्टेंस को ओवरकम ना कर सके और उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जो 14 घर जो थे और 15th इन खातून का अपना घर था, इन्होंने महीने में अपनी मेड को आयरन की और विटामिन की एक बोतल ख़रीद के देनी शुरू कर दी, जो उनकी तनख्वाह का बहुत ही मतलब एक छोटा सा हिस्सा था। जैसे सपोजिंग 100 रुपए की बोतल है और मेड की तनख्वाह 1000 रुपए है, तो वो उसमें से 900 रुपए उसको हाथ में रखते थे और साथ एक विटामिन की बोतल देते थे। ये सिलसिला चलता रहा और 3 महीने के बाद पूरी बिल्डिंग के लोगों ने नोट किया कि जिन मेड्स को विटामिन मिल रहे थे वो छुट्टियां बहुत कम करती थी, उन्होंने छुट्टियां करनी कम कर दी। और ये जब उन्होंने नोट किया तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही फिर वो उस चीज़ में शामिल होने लगे और उन्होंने भी विटामिन्स ख़रीद के अपनी मेड्स को देने शुरू किए कि हाँ आप भी ये ले लें, ये अच्छा आइडिया है। और इस तरह यानी उन खातून ने इस तरह अपना काम शुरू किया। अब वो खासी बड़ी मूवमेंट है और वो सब वर्किंग वीमेन के लिए बहुत काम करते हैं, बल्कि उसके दुनिया में बहुत जगह जगह पे उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि घरेलू मुलाजमत करने वाले लोग जो हैं उनको हफ्ते में एक छुट्टी मिलनी चाहिए और उनकी सेहत के लिए कुछ करना, यानी वो चीज़ जो है वो बहुत रेप्लिकेट हो रही है। ये तो बहुत साल पहले की मैं आपको, आप समझें कि ये मैं आपको सन 2000 से भी पहले की एक बात बता रही हूँ, यानी पिछली सदी की एक बात बता रही हूँ, जिसमें एक खातून ने सिर्फ ये सोचा कि अगर हम इन्हें विटामिन्स दें तो, क्योंकि वो बूढ़ी थी शायद खुद विटामिन खाती थी, तो यानी दिस इज़ द पावर ऑफ अ विजन, कि उन्होंने विजन सोची और उन्होंने फिर इंतज़ार नहीं किया, वो चल पड़ी, उन्होंने लोगों को कहा कि देखो मेरा ये आइडिया है तो क्यों ना हम ऐसे करें। और तकरीबन 40 अपार्टमेंट्स में से सिर्फ 14 या 13 अपार्टमेंट्स ने उनका साथ दिया, लेकिन वो चीज़ इतनी आगे चली गई और यानी कि अब ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे अगर आप अपनी मेड को हेल्थ कवरेज नहीं दे रहे हैं, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ख़रीद के दे रहे, तो वो आपके ऊपर केस कर सकती है और हुकूमत जो है वो आपको नोटिस भेजती है बाकायदा। फिर ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आप अपनी मेड को आपने फॉरेन टिकट ख़रीद के देना होता है, जैसे ओमान है या यूएई है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है या अमेरिका है, जहाँ पे आप अगर एक फॉरेन मुल्क की मेड रखते हैं तो फिर आपने उसको उसके मुल्क का एक वक्त का टिकट ख़रीद के देना है। और ये सारी बातें जो हैं ये एकदम से किसी के जहन में नहीं, किसी गवर्नमेंट के जहन में ये नहीं आया था, ये एक छोटे छोटे ऐसे वाकयात से शुरू हुआ था जहाँ किसी सेंसिटिव इंसान ने ये देखा कि इन मेड्स के साथ बड़ी ज़्यादती होती है और ये उदास होती हैं और डिप्रेस होती हैं और उनकी सेहतें ख़राब होती हैं, यानी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की अपने घर में। तो नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन हो, यानी कि आप नेटवर्क कैसे करेंगे। अब ये मेरी ये बातें सुन के आप इस वक्त यकीनन सारे ये सोच रहे होंगे कि वहाँ डॉक्टर अफशान ने नेटवर्किंग तो कह दिया है, मतलब क्या मतलब है नेटवर्किंग, इंटरनेट वर्किंग, मतलब हम कैसे नेटवर्क करें, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू नेटवर्क। तो आप ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलें, जो जगह आपको इंस्पायर करें, ये बहुत ज़रूरी है। इंस्पायरिंग जगहें जो हैं मसलन, और इंस्पायरिंग जगहें ऐसी नहीं है कि वहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ होता है कि आइए हमारे पास, हम इंस्पायरेशन भेजते हैं। इंस्पायरेशन आपके पास तब आती है जब आप अपनी विजन पे काम कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मैं कहीं आराम से बैठी हुई होंगी और मैं आराम से कॉफ़ी पी रही होंगी और मैं तो पैर टांग पे टांग रख के तो अपनी आंटी के साथ बातें कर रही होंगी और ढंग से करके और धम से करके जो है तो मुझे एक इंस्पायरेशन का झमाका होगा और बस मैं तो बड़ी इंस्पायर हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता। इंस्पायरेशन आपको रियली टफ सिचुएशंस में हिट करती है, जब आप टोटली एट अ लॉस होते हैं लेकिन आप फिर भी नाउमीद नहीं होते हैं और आप काम कर रहे होते हैं, खां वो गलत कर रहे हों, इवन वो काम जब आप अपनी गलती भी रियलाइज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए एक इंस्पायरेशन बन जाती है। तो घूमें फिरें प्लीज़, घर के अंदर बंद हो के ना बैठें, खैर है बाहर लॉन में चले जाएं। हमारी ख़वातीन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो समझती हैं कि मेरा घर मेरी जन्नत और मैं ये घर मेरा गुलशन है, और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, घर अल्लाह ने आपको एक छत दी है, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें, लेकिन घर से बाहर जाके प्लीज़ अल्लाह की कुदरत पर भी गौर किया करें। कंक्रीट की दीवारों के अंदर बंद हो के एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। फिर आप ऐसे लोगों से मिलें, हर किसी से मिलें। आपने देखा होगा हमारी ख़वातीन जो हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा कतराती हैं बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में जाने से, बहुत लोगों में मिक्स होने से वो बहुत घबराती हैं और कतराती हैं। आराम से जाएं, खैर चुप करके लोगों को ऑब्ज़र्व करें, लेकिन ज़रूर हफ्ते में एक दफ़ा एक ऐसी आउटिंग रखें जहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपसे लाइक माइंडेड हों। मैं जब कॉलेज में थी तो तब हमारे यहाँ एक बुक क्लब हुआ करता था, और यानी कि इस तरह की चीज़ें हैं जो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको बहुत ही मतलब लोगों से मिलना आपके लिए मुश्किल है तो आप फेसबुक का एक पेज बना लें जिसमें आप लाइक माइंडेड लोगों को जमा करें। जैसे मैं एक डॉक्टर साहब को जानती हूँ जिनके बड़े वेरीड किस्म के शौक हैं, अजीब अजीब अनयूजुअल शौक हैं उनके, जिनमें से एक शौक है फाउंटेन पेन जमा करना। तो वो अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम नहीं निकाल सकते थे, मतलब वो बहुत ही एक अजीब सा शौक था जो कि बहुत कम लोगों को होता है, तो वो अक्सर फील करते थे कि ये मुझे यार लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते। सो ही मेड अ फेसबुक पेज, आप अभी भी फेसबुक पे जाके देखें फाउंटेन पेन लवर्स, और उसमें इतने लोग हैं और उसमें सारी दुनिया के लोग हैं और वो बैठ के अपने फाउंटेन पेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आजकल तो दुनिया में ये कहना कि मुझे लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते वो ऐसे कहना है जैसे मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलती है, मतलब वो बिल्कुल झूठ है, वो बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई ये कहे कि मुझे लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते, इसका मतलब ये है कि वो या तो ढूंढ नहीं रहे हैं या वो किसी धोखे में हैं, उन्हें किसी ने गलत बताया हुआ है कि आप जैसे लोग तो कहीं पाए ही नहीं जाते। क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन की और सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि हर जगह से और दुनिया के हर कोने से आपको आइडियाज़ भी मिलते हैं और लाइक माइंडेड लोग भी मिलते हैं। यूट्यूब पे जाके आप सिर्फ अपना आइडिया टाइप करें, ये मेरा चैलेंज है आपको, आप YouTube पे जाएं और जो आपकी विजन है, मसलन आप एक लिखें अ स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रन, और या आप लिखें फ्री हेल्थ सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट वेमेन, या आप लिखें, मैं तो बच्चों और औरतों की बातें करती रहती हूँ सॉरी, मतलब या आप लिख दें हाउ टू राइट अ बुक, हाउ टू पब्लिश योर बुक, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको वहाँ नहीं मिल सकती. हाउ टू बिल्ड एन एंट कॉलोनी, आई मीन फॉर गॉड सेक, क्या कुछ वहाँ पे नहीं है. तो अपनी यानी कि ये अपने सेल फोन्स जो आपके हैं, स्मार्टफोन्स प्यारे प्यारे, किसी को उनके हस्बैंड ने ख़रीद के दिए हुए हैं, किसी ने खुद बड़ी मुश्किल से पैसे बचा के ख़रीदे हैं, वो इस्तेमाल करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें प्लीज़, ठीक है ना. उसके बाद आप ख़ुद ऐसी गैदरिंग्स अरेंज करें जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आएं, ऐसे लोग हों जिनका आपकी विजन से ताल्लुक़ हो, ये बहुत ज़रूरी है. जैसे मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ कि इंशाल्लाह दिसंबर में हमने एक विजन्स रिट्रीट रखनी है, और उसमें आप सब इनवाइटेड होंगे, और आप जैसे और भी बहुत से लोग इनवाइटेड होंगे. और वहाँ पे जैसे अगर कोई ये कहे कि मुझे मुझे एक किताब लिखनी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे पब्लिशर्स अवेलेबल हों जो आपको गाइड कर सकें. और कोई ये कहे कि मुझे एक एकेडमी खोलनी है, मतलब एक फ़िटनेस स्कूल खोलना है, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि वहाँ पे ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो आपको इसमें मशवरा दे सकें. तो पूरी कोशिश करें कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में अपने आप को आप फारिग रखें, और इस रिट्रीट में जितने ज़्यादा लोग शरीक होंगे, इंशाल्लाह देर विल बी अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, और उतना ही सबको फ़ायदा होगा. मतलब मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप जितने भी विजनरी लोग हैं, अगर वो एक जगह पर जमा हो जाएँ, तो वो क्या नहीं कर सकते. मैं वक्तन फवक्तन फेसबुक पे अक्सर ऐसी वीडियोस लगाती हूँ जिनको देख के मैं बहुत सोचती हूँ कि अल्लाह का बनाया हुआ ये इंसान जो है, ये अल्लाह की तख्लीक जो है, ये इंसान इस दुनिया में ऐसी जगहें और ऐसी चीज़ें बना रहा है जिनका जिक्र कुरान में है कि वो सिर्फ जन्नत में होंगी. तो ये इंसान अगर इस दुनिया में जन्नत बना सकता है अपनी मेहनत से और अपनी रिसर्च से और अपनी विजन से, तो क्या हम मुसलमान जो हैं, जिनके हाथ में कुरान है, जिनको अल्लाह ताला की पूरी 100% गाइडेंस अवेलेबल है अपने पैगंबर की उस्वा हसना की शक्ल में, क्या हम इसी तरह जानमाज़ों पे बैठ के दुआएं करते रहेंगे और हम जन्नत मांगते रहेंगे, मीनवाइल हमारा जो माहौल है वो ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है, हमारे यहाँ सारी के सारे ड्रेनेज जो है वो प्लास्टिक के थैलों से बंद हो गई है, हमारी CO2 की एमिशन्स जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, हमारे शहर जो हैं, हमारे बल्कि जो सबसे खूबसूरत शहर है हमारे मुल्क का लाहौर, वो 3 महीने स्मॉग में डूबा रहता है, और हम जन्नत की दुआएं, बस हमें जन्नत दे दे या अल्लाह हमें जन्नत दे दे. तो अल्लाह ने हमें यकीनन, मैं अब ये नहीं कहती कि मैं कोई दावा कर रही हूँ, लेकिन क्या अल्लाह हमें ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हें तो मैंने इतनी बड़ी अकल दी थी, इतना ज़बरदस्त दिमाग तुम्हें दिया था, इतनी ज़बरदस्त विजन मैंने तुम्हें दी थी, तुम अपने लिए जन्नत नहीं बना सके, तुमने मेरी दुनिया को दोज़ख बना दिया. तो देखें, एक साथ मिलकर एक अच्छे मकसद के लिए काम करना जो है वो हमारे पैगंबर की सुन्नत है, और उसी की हमें तलकीन की गई है कुरान में. तो उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक दूसरे की इंस्पिरेशन बनेंगे, हम किसी इंस्पिरेशन के झमाके की या धमाके का इंतज़ार नहीं करेंगे. एक और मिसाल आखिर में मैं आपको बस जल्दी से दे दूं कि बाज़ लोग, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग अक्सर कैंसर की उस डायग्नोसिस का इंतज़ार करते हैं जिसके बाद हमारी ज़िंदगी शुरू होती है. यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी की कदर उस वक्त तक नहीं होती जब तक हमें ये एहसास ना हो जाए कि ये अगले 6 महीने में या 1 साल में ख़त्म होने वाली है. तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, और सबसे बढ़ के अपने आप से ये दरख्वास्त है कि उस लम्हे का इंतज़ार ना करें जब आपको पता होगा कि आप सिर्फ़ कैलेंडर पर अब तारीखें गिन रहे हैं, और अल्लाह का ये दिया हुआ तोहफ़ा जो है, ये खूबसूरत ज़िंदगी और ये एक्टिव दिमाग और ये ज़बरदस्त अनलिमिटेड इमेजिनेशन जो है, अब ये ख़त्म होने वाली है. तो इसे ना ख़त्म होने दें, और अपने से आने वाली दुनिया के लिए और मज़ीद जो हैं इस दुनिया में प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे जो लोग इंसान आने वाले हैं, जो और मखलूकात आने वाली हैं, उनके लिए कोई बड़ा काम करके जाएं, कोई काबिल कदर मीरास छोड़ के जाएं. ठीक है जी, कल मिलने के वादे के साथ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.